الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العظيم بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی دعائے ذی البحر کے چلے کی اختتامی تقریب منعقد ہو رہی ہے، اور سب سے پہلے میں اپنی جانب سے ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس مرتبہ بھی بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ اس چلے کی تکمیل کی، اللہ تبارک و تعالی انہیں مزید استقامت عطا فرما. اس مرتبہ ہم نے رجب سے چلے کا آغاز کیا، اور وہ دعائے ذی البحر کا چلہ نہیں تھا، اللہ الصمد کا چلہ تھا. اور اس میں یہ اعلان کیا گیا کہ یکم رجب سے جو شروع کرے گا تو رمضان المبارک سے پہلے اللہ الصمد کا چلہ جو ہے مکمل ہو جائے گا، اس میں روزے کی شرط نہیں تھی. تو اس لیے کافی حضرات نے اس میں حصہ لیا اور اپنا نام لکھوایا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ 3125 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے تو 40 دن میں سوا لاکھ ہو جائے گا ایک وقت مقررہ پر، اور اگر جگہ بھی مقرر کر دی جائے تو زیادہ بہتر. تو اس میں بہت سے مردوں نے، عورتوں نے، مریدین معتقدین میں سے سب نے کیا، اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ وہ مکمل ہوا. اس کے بعد استغفار کا چلہ شروع ہوا، اس میں بھی کافی لوگوں نے حصہ لیا. وہ تھوڑا سا کیونکہ طویل ہے اور اللہ الصمد تو مختصر ہے، تو اس لیے اس میں کچھ تعداد کم رہی، لیکن پھر بھی یہ ہوا کہ وہ چلہ الحمدللہ مکمل ہوا. ان کا رمضان المبارک میں ہوا کیونکہ انہوں نے شعبان میں شروع کیا تھا. رجب سے شروع کرانے کی حکمت یہ تھی کہ جو لوگ مسلسل روزے رکھتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے 3 مہینے کے روزے رکھے، یہ آپ کو خوشی ہوگی کہ مسلسل 3 مہینے کے روزے انہوں نے رجب سے شروع کیے اور رمضان المبارک تک روزے رکھے، تو وہ لوگ بھی ان کے لیے آسانی تھی. اور ویسے ہم نے اس میں کوئی شرط نہیں رکھی، بغیر روزے کے لوگوں نے شروع کیا، اللہ الصمد کا چلہ کیا، استغفار کا کیا. اور رمضان المبارک میں کیونکہ دعائے ذی البحر کا چلہ یکم رمضان سے شروع ہو کر 12 تاریخ کو، جیسے 29 کا چاند ہو تو 12 کو، اور 30 کا ہو تو 11 کو مکمل ہوتا ہے. اس میں بھی الحمدللہ کافی تعداد نے اس میں حصہ لیا، اور جو تعداد ہمارے پاس آئی اس میں 110 افراد نے چلہ کیا الحمدللہ. یہ صرف مقامی ہیں، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے نام لکھوائے، بہت سے ایسے کہ جنہوں نے نام بھی نہیں لکھوائے اور بعد میں انہوں نے فون کر کے بتایا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یعنی وہ ہر سال روٹین میں کرتے ہیں. اللہ الصمد کا چلہ جن حضرات نے کیا ان کی تعداد 83 ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. 83 افراد نے اللہ الصمد کا چلہ کیا. ہالینڈ میں جن حضرات نے دعائیں ذی البحر کا چلہ کیا ان کی تعداد 15 ہے. اسی طرح دبئی، ابوظہبی وغیرہ دیگر، وہاں کی تعداد ابھی ہمارے پاس نہیں آئی، اس وجہ سے ہم نے اس کا اعلان نہیں کیا. ساؤتھ افریقہ میں بھی اور انگلینڈ میں بھی لوگوں نے الحمدللہ یہ چلہ کیا، اور اپنے اپنے طور پر. مثلا ہالینڈ میں کل ان کے روزے پورے ہوئے، تو انہوں نے کل اسی طرح مرکز اشرفیہ روٹر ڈیم میں تقریب منعقد کی، जिस तरह आज आप लोग बैठे हैं इसी तरह उन सब ने वहां इफ्तार किया, उसके बाद दुआ हुई, इसाले सवाब किया गया बुजुर्गान सिलसिले अशरफिया को और खुसूसन साहिब हिफ्ज़ुल बहर हजरत शेख अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के रूह पाक। ये सब फैज है मेरे वालिद गिरामी अशरफुल मशाइख हजरत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी जिलानी नव्वरल्लाह मरकज़हू। उन्होंने ये तमाम चीजें राइट की, जिस तरह के कोई किसी फील्ड में होता है उसमें मेहनत करता है, एक डॉक्टर है वो मेडिकल में मेहनत करता है, इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग में मेहनत करता है, तो अहले तसव्वुफ और मारिफत जो अपने सीने में उलूम और मारिफ का रूहानियत का समंदर लिए बैठे हैं, उन्होंने इस सिलसिले में मेहनत की कि किस तरह लोगों को इस तरफ रागिब किया जाए। अब आप देखते हैं बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने 40-40 दिन मुसलसल रोजा रखा या इससे ज्यादा, फिर चिल्ले किए, सख्त रियाजत और मुजाहिदा, नमक से रोजा रखा, नमक से रोजा खोला। आज अगर किसी को बिठा दिया जाए तो 2 दिन में भाग जाएगा। खाने के लिए चीजें होनी चाहिए, इफ्तार के लिए चीजें होनी चाहिए, सारी चीजें। एक साहब को चिल्ले के लिए फरमाया वाली साहब ने, तो उन्होंने कहा अच्छा 40 दिन, तो फिर मैं 5 मगज भी लेकर आऊंगा ताकि पढ़ पढ़ के जो मेरा दिमाग थोड़ा सा वो होगा वो भी मैं खाऊंगा, फिर मैं कुछ दिन बादाम भी खाऊंगा, फिर असली घी भी, इस तरह करके उन्होंने अपनी सेहत का इंतजाम किया। तो वालिद गिरामी ने फरमाया कि तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम नहीं कर सकते, ये नफ्स का मुजाहिदा है, नफ्स खुशी है, तब जाकर कुछ हासिल होगा, पहले से सोचेंगे तो कैसे हासिल होगा। तो उन्होंने देखा कि उन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने तो सख्त इबादत की और हकीकत यह है कि उसका अशरे अशीर भी हम नहीं कर सकते जो उन्होंने किया, उसका एक कतरा भी हमें मिल जाए तो हम कामयाब हैं। इसलिए इस चिल्ले को उन्होंने रमजानुल मुबारक में कर दिया ताकि 30 या 29 रोजे रमजान में हो जाएं और उसके बाद 10 रोजे आप रख लें। शहीद के रोजे भी लोग रखते हैं, 6 उसमें हो जाएं, फिर बाकी बचेंगे 4, वो आपने पूरे कर लिए, 40 हो गए। ये उन्होंने इस पर रिसर्च की और इस तरह तादाद में इजाफा हुआ। अब जितने लोगों ने चिल्ला किया है, अगर हम उनसे कह दें कि यकुम रजब से शुरू करना है तो कितने लोग होंगे, हाथ तो सारे उठा लेंगे लेकिन करने में सब भाग जाएंगे, 1-2 ही रह जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर, कुछ तो करेंगे, अगर वो नहीं कर सकते कम से कम ये करें, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हुआ। और उसी नजरिए को, उसी फार्मूले को हमने इस्तेमाल करते हुए रजब से शुरू कराया कि जो लोग ये नहीं कर सकते कम से कम अल्लाह समद का चिल्ला कर। और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा कि हमारे लिए मुश्किल है, हम परहेज नहीं कर सकते, और परहेज बड़ा जरूरी है, अंडा मछली गाय का गोश्त इसका परहेज नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी हमने इजाजत दे दी तुम बगैर परहेज के कर लो, करो तो सही कुछ तो करो। किसी ने कहा तादाद ज्यादा है कम कर लें, कम कर लो, 3 से भी कम कराने के लिए लोग आ गए, आपको हैरत होगी, तो अब 3 से मैं क्या कम करूं, या तो 2 होगी या 1 होगी, क्या बेहतर यह कि आप ना ही करें तो अच्छा है, आप घर में आराम करें वो ज्यादा बेहतर। तो इसलिए जब इस राह में कदम रखा है तो फिर सोचना ये चाहिए कि जो शेख का हुक्म हो वही हमें करना, उसमें फिर अपनी मर्जी नहीं है। जब आपने बैत कर ली तो बेच दी अपने आप को, अब जो शेख की मर्जी वो आपकी मर्जी, वो कहता नहीं शेख हमारी मर्जी पे चले, हम उनकी मर्जी पे क्यों चले, अगर इन्होंने 7 कही है तो हम 3 पढ़ेंगे, 3 कही है तो 2 पढ़ेंगे, वरना 1 पढ़ेंगे, वरना गायब पढ़ेंगे। तो इसलिए इस राह में जो है सबसे बड़ी चीज इस्तेकामत है, इस्तेकामत अलल मामूलात, जब आपने शुरू कर दिया तो फिर हो कुछ भी, मगर जो कदम उठ गया है वो पीछे हटाया तो अच्छा ना हो, हजारों मसाइब है राह तलब में अगर हिचकिचाया तो अच्छा ना हो, वो जलवा जो छुप कर कभी हम दिखाएं किसी को दिखाया तो अच्छा ना हो, वो नगमा जो पिछले पहर हम सुनाएं किसी को सुनाया तो अच्छा ना हो, कभी भूल कर गैर के नक्शे पा को जिबी से लगाया तो अच्छा ना हो, हम ही हम हैं बातिन में लेकिन बजाहिर अगर कहीं जिक्र आया तो अच्छा ना हो, जिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस ये कहकर उन्होंने मुझे राज सौंपा, ये कहकर उन्होंने मुझे राज सौंपा। किसी को बताया तो अच्छा ना, किसी को बताया तो अच्छा ना होगा। यहां तो कैफियत ये कि जी हमने इतने चिल्ले किए हैं, हम हर साल चिल्ले कर रहे हैं, हमने अल्लाह समद के चिल्ले किए, हमने फलां की, किसी को बताया तो अच्छा ना होगा, बताने की जरूरत ही नहीं। तुझे क्या मिला, क्यों मिला, किसने बख्शा, कहीं जिक्र आया तो अच्छा ना हो। कहते जी हमें जियारत हो गई, हमें फलां की जियारत हो गई। आज आप देखते हैं इस जमाने में बहुत से लोगों के ख्वाब चल रहे हैं, किसी का कुछ चल रहा है, किसी का पहले भी ख्वाब चलते रहे बहुत सों के। तरीकत का उसूल यही है कि जो कुछ वारदात कल्बी हो सिवाय अपने शेख के किसी को ना बताओ, और अगर आपने बता दिया तो वो चीज छिन जाएगी। जब इंसान कुछ पढ़ता है तो उसके अंदर नूरानियत दाखिल होती है, उसका कल्ब वसी होता है, कल्ब रोशन होता है, उसका मुराकबा खुलता है, उसकी बातनी आंख खुलती। उस वक्त जो कैफियात आपके कल्ब पर वारिद हो, किसी बुजुर्ग की जियारत हो या नबी पाक अलैहिस्सलाम की जियारत हो, कहीं जिक्र आया तो अच्छा ना हो। जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। बस जब मेरे वालिद गिरामी फरमाते थे, हजरत अशरफ अलमशाइख सैयद अहमद अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जब मुशाहिदा होता है तो जबान बंद कर दी जाती, जब मुशाहिदा होता है तो जबान बंद कर दी जाती, जो हम दिखा रहे हैं देखते रहो, किसी को बताने की जरूरत नहीं, कहीं जिक्र आया तो अच्छा ना हो। तो आप देखें कि अगर कोई कहे कि हमने ये किया, हमने चिल्ले किया, हमने फला किया, तो एक बात याद रखो, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, और जब भर जाता है फिर उसमें आवाज नहीं, फिर उसमें आवाज नहीं। कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सुकूत, कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना जर्फ उतना वो खामोश, जिसका जितना जर्फ उतना वो खामोश। आज हमें कोई बात पता चल जाए, मैं इसको बता दूं, मैं उसको बता दूं, मैंने ये देख लिया मैं उसको बता दूं, मैंने चिल्ला किया मैं फला को बता दूं, मुझे जियारत हो गई मैं बता दूं। ये बुजुर्गाने दीन औलिया कामिलीन जो इल्म रूहानियत और मारिफत का समंदर है और अपने सीने में न जाने कितने लोगों के राज लिए बैठे हैं, कभी जबान पर नहीं आए। राज उसी को बताया जाता है जो राज को राज रखे, और जो फाश कर दे उसे फिर नहीं बताया जाए, उसे फिर नहीं बताया जाए। तो ये तो राज नियाज की बात है, ये तरीकत में जब आपने कदम रखा है तो ये सब राज नियाज है। आपने कितने चिल्ले किए, आप क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते, कितनी इबादत करते हैं, जिसके लिए करते हैं उसको मालूम हो या आपके शेख को मालूम हो, बस और किसी को मालूम नहीं। यहां तो कैफियत ये, कुछ पढ़ लिया, किसी से पूछा आप पढ़ रहे हैं, कहते हाँ बहुत रूहानियत आ गई, हमें आके बता रहे बहुत रूहानियत आ गई, काफी, यानी कि अच्छा भर गया होगा पूरे ऊपर तक, नूर ही नूर भरा हुआ। पूछना हमसे चाहिए कि हमने पढ़ा है तो सही पढ़ा भी या नहीं, वो हमें आके बता रहे रूहानियत काफी आ गई मेरे में। मैं सोचने लगा ये बुजुर्गाने दीन औलिया कामिलीन जो आराम फरमा है, जिन्होंने सारी जिंदगी इबादत में गुजार दी, एक लफ्ज जबान पर नहीं लाए, वो अगर हमारे हाल को देखते होंगे तो मुस्कुराते ना, ये लोग क्या खेल तमाशे कर रहे हैं, ये कोई चिल्लाकशी है, ये कोई खेल तमाशे। इबादत वो थी जो कुतुब रब्बानी ने की, इबादत वो थी जो अशरफुल मशाइख ने की, इबादत वो थी जो मखदूम समनानी ने की, इबादत वो थी कुतुब लखताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने की, इबादत वो थी जो जहदुल अंबिया बाबा फरीद ने की, इबादत वो थी जो सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने की, इबादत वो थी जो गौसे आजम ने की। हम और आप क्या इबादत करें, हम तो उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उनकी नाना ने पास से लगे हुए एक जर्रा हम पर पड़ जाए तो हमारी निजात हो जाए। कैफियत तो ये है, हकीकत तो ये। तो कहने का मकसद ये है कि आप हजरात ने अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिन बड़ी पाबंदी के साथ रोजे भी रखे, परहेज भी किया, लेकिन अब देखना ये है कि 40 दिन के बाद हमारे अंदर तब्दीली क्या आई, 40 दिन के बाद हमारे अंदर क्या तब्दीली आई। तब्दीली तो आनी चाहिए ना, जब आपने हिज्जुल बहर पढ़ी इतनी जबरदस्त दुआ, वो अजीम शान दुआ जो किसी ने लिखी नहीं है। शेख अबुल हसन अली शाज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये दुआ मैंने नहीं लिखी, ना इसके अल्फाज मैंने तराशे हैं, मैंने इसका एक एक लफ्ज हुजूर के दहने मुबारक से लिया, सरकार ने मुझे याद कराई है और मैंने फिर इसको आम कर दिया। ये अजीम शान दुआ, वो हम पढ़ें और तब्दीली ना आए, वो हम पढ़ें और वैसे के वैसे ही रहें, वो दुआ हम पढ़ें और हालात न बदलें, वो दुआ पढ़ें और दिल की कैफियत न बदलें, वो दुआ पढ़ें और बातनी आंख न खुले, क्या वजह है? क्यों? अपना मुहासबा करो, अपने अंदर झांक कर देखो, वजह क्या है? तब्दीली क्यों नहीं आई? तब्दीली इसलिए नहीं आई कि एक चीज है इलाज और एक चीज है परहेज। इलाज और परहेज दोनों जरूरी हैं। आप इलाज करते रहें, बदपरहेजी करें, कोई फायदा नहीं। डॉक्टर के पास गए, मुझे नजला है, खांसी है, बुखार है, उसने कैप्सूल लिखकर दे दिए, सुबह खाना है, दोपहर को खाना है, शाम को खाना, ये गोली सुबह खानी है, ये दोपहर को, ये शाम को। फिर कहा सुनो, ठंडे पानी का परहेज, खट्टी चीजों का परहेज, कोल्ड ड्रिंक का परहेज, जितनी ऐसी चीजें मशरूबात सब बंद। कहा ठीक है, सुबह एक कैप्सूल खा लिया, दोपहर को खा लिया, शाम को खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, मेरिंडा भी पी ली, दही बड़े भी खा लिए, पकौड़े भी खा लिए, और उसके बाद गए डॉक्टर के पास, मुझे तो फायदा नहीं। उसने कहा दवा खाई थी? हाँ खाई थी। परहेज किया था? नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। अच्छा, पकौड़े थोड़े से खा लिए थे, थोड़े से ज्यादा नहीं। अच्छा, दही बड़े भी थोड़े से ले लिए थे। फायदा होगा? नहीं। अल विकाया तो खैर मिन अल इलाज, परहेज इलाज से बेहतर। अगर दवा ना खाओ और सिर्फ परहेज कर लो, आधी बीमारी वैसे ही दूर हो जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीब इंसानियत, आपने इलाज भी बताया, परहेज भी बताया। दिन में 5 मरतबा रब की बारगाह में हाजिरी देनी है, 5 मरतबा। लेकिन सुनो, झूठ का परहेज है, गीबत का परहेज है, चुगली का परहेज है, जिना का परहेज है, चोरी का परहेज है, तमाम चीजों का परहेज है, फिर नमाज पढ़ो, देखो कैसे रूह में ताजगी पैदा हो, कैसी रूहानियत पैदा होगी, सच्चे पक्के मोमिन मुसलमान बन जाओ। हमने क्या किया? इलाज भी करते रहे, बदपरहेजी भी करते। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इसी तरह चिल्ले में भी आपने पूरा चिल्ला कर लिया, नमाजों की पाबंदी नहीं है, झूठ जारी है, गीबत जारी है, चुगली जारी है, बदआमालियां जारी हैं, कोई फायदा नहीं चिल्ले का, कोई फायदा नहीं। इसलिए जाहिरी या बातनी तब्दीली नहीं आती। जो अहले तरीकत हैं उन पर लाजिम है सबसे पहले 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, उसके बाद अपने वजाइफ की पाबंदी करें, और उसके बाद झूठ से, गीबत से, चुगली से, बदआमालियों से, गलत चीजों से अपने आप को बचा कर रखें। तब ये दिल की दुनिया बदलेगी और ये बातनी आंख खुलेगी, और जब बातनी आंख खुलेगी तो यहीं बैठे बैठे मदीने वाले के जलवे नजर आ जाए। फिर जरूरत नहीं कि तुम वहां जाओ और कहो सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, तभी वो सुने, यहीं से पुकारो, यहीं सुन रहे। कहने का मकसद ये है कि हमें इन तमाम चीजों से परहेज करना है, ताकि खुद हमें महसूस हो कि इस चिल्ले के बाद हमारे अंदर तब्दीली आई। दूसरी एक और वजह है तब्दीली ना आने की, कि 40 दिन तो बड़ी पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है, जाने आने से भी रुक गए, कहीं जा रहे हैं तो टाइम देख रहे, नहीं मुझे इस दुपहर पढ़नी, नहीं मुझे पढ़नी, पहुंच गए पढ़ ली, और 40 दिन के बाद बंद करके रख दी, पूछा ही नहीं। अब पूछा पढ़ रहे हो? हाँ जी, चिल्ला तो किया था। अब चिल्ला तो किया था, बाद में क्या हुआ? बाद में उसको उठाकर रख दिया, कोई फायदा नहीं। अगर आपने ये चिल्ला किया है तो पूरे साल कम से कम 1 मरतबा जरूर पढ़ें, 1 मरतबा, ये तो कम है, 3 मरतबा भी पढ़नी चाहिए। चिल्ले के दौरान जिन्होंने 7 मरतबा पढ़ी है वो 3 मरतबा कम से कम पढ़े, और जिन्होंने 3 मरतबा पढ़ी है अगर वो जारी रख सकते हैं तो 3 मरतबा, वरना 1 मरतबा जरूर पढ़े, उसका तसलसल बरकरार रहेगा। और ये ऐसी दुआ है कि इसके अंदर सब कुछ है, तरक्की इसमें है, कामयाबी इसमें है, दिल की सफाई इसमें है, लोगों की नजर में इज्जत इसमें है। अल्लाहुम्मा जालनी फी आयुनिन नासी वजलीलन फी आईनी, ये इसी में है। मौला मुझे लोगों की नजरों में इज्जत दे और मैं अपनी नजरों में मैं जलील हो जाऊं, इसके पढ़ने वाले की कैफियत यही होती है। वो अपने आप को फिर कुछ नहीं समझते, लोग उसे समझते। होना यही चाहिए, लोग समझे कि हाँ ये बहुत कुछ है, और खुद अपने आप को समझे मैं कुछ नहीं। यही तरीकत का उसूल है। सारे बुजुर्गाने दिन ये कहते रहे हम कुछ नहीं, जिन्होंने कहा हम कुछ नहीं, खुदा ने उन्हें सब कुछ बना दी। कोई महबूब रब्बानी तो कोई महबूब सुभानी, कोई मुजद्दिद अल्फिसानी तो कोई मखदूम समनानी, एक से एक दर्जा तो मरातिब पाते रहे। हम कुछ नहीं, और यहां उल्टा ही मामला है। वो कहते नहीं हम हैं, हम सब कुछ हैं। जिसने कहा हम हैं, अल्लाह ने फरमाया अच्छा तुम कुछ नहीं, जाओ, खत्म हो गया। बुजुर्गाने दीन की कैफियत तो ये थी, शायद मैंने पहले भी एक मर्तबा आपको सुनाया, लफ्ज मैं भी इस्तेमाल नहीं करते। मैं एक लफ्ज है ना, मैं, हम इस्तेमाल करते, कहीं ये मैं जो है इसकी पकड़ भी ना हो जाए। वो कहे तुम हो क्या, कहे मैं हूं, तुम क्या हो, तुम कुछ नहीं। एक बुजुर्ग लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करते थे, तो एक आदमी पहुंचा, उनके मुतालिक मशहूर था, उसने कहा ये लफ्ज मैं इनकी जबान से निकलवाऊंगा, ये जो मैं लफ्ज है मैं निकलवाऊंगा। उन्होंने कैसे निकलवाऊ, वो तो इस्तेमाल ही नहीं करते, वो मैं की जगह हम इस्तेमाल करते एहतियात के तौर पर। वो चला गया, अरे तुमने ऐसे बुजुर्गों को चढ़ा रखा है, मैं जाता हूं अभी जाके देखो। जाके पूछा, कहने सवाल ही ऐसा करूंगा कि उनके मुंह से मैं निकलेगा। सवाल किया, हजरत बताइए शैतान किस अमल की वजह से रांदा दरगाह हुआ? कौन सा अमल था, किस लफ्ज की वजह से? और यही था, उसने कहा था ना अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। हजरत आदम अलैहि सलाम को अल्लाह ने फरमाया ना उस्जुदु लिआदम, सजदा करो। इसने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूं। जब इसने कहा मैं बेहतर हूं, अल्लाह ने फरमाया फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, निकल जा तू मर्दूद है, कयामत तक तुझ पर लानत। तो अब लफ्ज तो यही था और सवाल यही किया था, वो कहेंगे मैं, तो मैं कहूंगा देखो इनके मुंह से निकलवा दिया। बताइए कौन सा लफ्ज था जिसकी वजह से शैतान मर्दूद हुआ? उन्होंने कहा बैठ जाओ, अभी नमाज पढ़ ले फिर बताएंगे। बुजुर्गों की भी एक शान है, हर एक को अपनी तरह मत समझो। वो जब इंसान आता है तो वो एक्सरे पहले ही कर लेते, एक्सरे से अंदर का पता चलता है ना, अंदर क्या है। मशीन से एक्सरे होता है, अल्लाह का वली निगाह से एक्सरे करते। गौसे आदम ने फरमाया तुम जितने लोग हो मेरे सामने शीशे की बोतल की तरह हो। अपने मुरीदीन से फरमाया जितने भी हो शीशे की बोतल की तरह हो, शीशे की बोतल में जो डाल दो अंदर है वही बाहर, जो बाहर है वही अंदर, नजर आ रहे हैं ना, तुम सब शीशे की बोतलों की। तो फरमाया नमाज पढ़ लें फिर बताएंगे। नमाज पढ़ ली, जब नमाज पढ़ के बैठे, बुजुर्ग ने कहा कौन साहब थे जिन्होंने सवाल किया था? इसने कहा मैं। कहा यही लफ्ज था, यही लफ्ज था। चुप हो गया, जवाब तो मिल गया था। उन्होंने बता दिया तुम हमसे कहलवाना चाहते हो, हम तुमसे कहलवाते, क्या समझ रखा, अपनी तरह समझ रखा। नहीं, न पूछ इन खरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ऐसे नहीं बैठे हैं, तुम समझ लो कि जैसे हम हैं ऐसे ये हैं। इल्म और मारिफत का समंदर, रूहानियत का समंदर अपने सीने में लिए बैठे हैं, लेकिन जबान से कुछ नहीं। कह दिया नहीं हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, सब कुछ यही जानते हैं। तुम्हारे जाहिर को भी जानते हैं, तुम्हारे बातिन को भी जानते हैं, जो तुम सोच कर आए हो वो भी जानते हैं, जो तुम पूछना चाहते हो वो भी जानते हैं। कितने वाकयात। तो कहने का मकसद ये है, अल्लाहुम्मा जानी अजीजन फी आयुनिन नासी व जलीलन फी ऐनी। ये अगर हमारा हाल हो जाए, हम अपने आप को समझे हम कुछ नहीं, लोग समझे कि हाँ ये है। हिफ्ज़ुल बहर पढ़ने वाले की यही कैफियत होती, जब वो मुसलसल पढ़ता है, कहीं जाता है लोग इज्जत करते हैं, एहतराम से देखते हैं, वकार उसका कायम होता है, और वो अपने आप को समझता है मैं कुछ नहीं। ये हमारा हाल हो जाए तो हम कामयाब। दूसरी बात ये है, कल्बी कैफियत का हमने जिक्र कर दिया कि अगर कोई ऐसी कैफियत जाहिर हो, कोई ख्वाब नजर आए, कोई इंकशाफ हो, تو صرف اپنے شیخ کو بتائیں، عوام الناس میں ذکر نہ کریں، اس سے وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ ہم نے جو کچھ کیا اللہ کی رضا کے لیے، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اب میرے پاس بہت سی ای میل آتی ہیں رمضان مبارک شروع ہونے سے پہلے، کہ اور ای میل کیا ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی، اگر اجازت دے تو میں حجۃ البحر پڑھ لوں، شادی ہو جائے. نہیں، یہ اس لیے نہیں پڑھتے. ویسے کوئی کہتا ہے کہ میرا کاروبار ہو جائے، میں حجۃ البحر پڑھ لوں، اس میں برکت ہو جائے. کوئی کہتا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، حجۃ البحر پڑھ لوں، اس کی وجہ سے ہو جائے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس لیے پڑھ. کاش کوئی ایسی بھی ای میل آ جائے کہ وہ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس لیے پڑھ. بزرگان دین نے فرمایا صرف اس کی رضا کو فوقیت دو، صرف یہی ذہن میں رکھو کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، باقی کام تو خود بخود ہو جائیں. سارے کام اس کی رضا پر موقوف ہے. ہم کہتے ہیں یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے. ہم دنیا والوں کو راضی کرتے رہے، غوث اعظم اللہ کو راضی کرتے، سلطان الہند اللہ کو راضی کرتے رہے، بابا فرید اللہ کو راضی کرتے رہے، قطب الاقطاب اللہ کو راضی کرتے رہے، داتا گنج بخش اللہ کو راضی کرتے رہے، مخدوم سمنانی، اشرف المشائخ، قطب ربانی، یہ سب اللہ کو راضی کر. یہ اس نقطے کو سمجھا ان بزرگان دین، اور جب وہ راضی ہو گیا پوری کائنات راضی ہو. تو اپنے ذہن کے اندر صرف یہ رکھیں، اس کے اندر سب کچھ ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ عزت ہے، احترام ہے، ترقی ہے، اور لوگوں کی نظر میں عزت ہے، جہاں پر آپ چلے جائیں ہر کام میں کامیابی ہے. یعنی ایک مکمل دعا ہے، بحر سمندر ہے اور سمندر میں ہی عطا ہوئی، اسی لیے اس کا نام دعا حضر البحر ہے. اور سمندر کیا ہوتا ہے؟ سب چیز اپنے اندر لے لیتا ہے، سمندر سب کچھ اس کے اندر، سب کچھ اس کے اندر. تو اس دعا کے اندر سب کچھ، دین اور دنیا کی کامیابی اسی میں ہے. لیکن نیت کیا ہو؟ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مولا تم مجھ سے راضی ہو. بس یہ نیت کر کے آپ پڑھیں، الحمدللہ آپ نے چلہ مکمل کر لیا. جیسا بھی ہم نے پڑھا، جو انہوں نے پڑھا ویسا تو ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن جیسا بھی پڑھا ایک امید ضرور ہے کہ جب انہوں نے پڑھوایا ہے تو قبول بھی وہی کرائیں، جب انہوں نے پڑھوائے تو قبول وہی کرائیں گے. ہماری تو دوڑ، کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد، تو ہماری دوڑ تو وہیں تک، اپنے پیر تک ہے. ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے، آگے وہ قطب ربانی کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے، وہ مخدوم سمنانی تک پہنچا دیں گے، وہ غوث جیلانی تک پہنچا دیں گے، وہ رسول اعظم تک پہنچا، ہو جائے گا قبول. تو اس لیے آخری بات یہ ہے کہ اب جن حضرات نے بڑے خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کا ورد کیا ہے، ان تمام کے لیے ہدایت یہ ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، اور اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے خود اپنا محاسبہ کریں. ہم ہر ایک کو دیکھ کر نہیں کہیں، ہر ایک کی کیفیات پتہ ہے، لیکن ہر ایک کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ خود اپنے آپ کو دیکھ لے، میں نے کتنا جھوٹ بولا، میں نے کتنی غیبت کی، میں نے کتنا غلط کام کیا، جس کی وجہ سے یہ روحانیت کے نورانیت قلب میں پیدا نہیں ہو رہی. عقل حلال اور صدق مقال، یہ دو چیزیں لازم ہیں. عقل حلال، صدق مقال. حلال رزق کھائیں اور سچ بولیں، سچائی کے ساتھ رہیں، ہر معاملے میں سچ بولیں. جھوٹ جو ہے یہ زبان کا اثر ختم کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول دیتا ہے. تو جب اس پر ہم خود اپنا محاسبہ کریں گے اور اس چیز پر کنٹرول کریں گے، تو آپ خود دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے اندر ظاہری باطنی تبدیلی پیدا ہو. یہ بڑی عظیم دعا ہے. تو جن حضرات نے کیا ان سب کو میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ جو ای میلز ہمارے پاس آئیں اور ہم نے ان کو اجازت دی، ان کی تعداد 43 ہے. یہ تمام جو ہیں انڈیا سے، انڈیا میں گجرات سے، دہلی سے، لکھنؤ سے، اور اس کے علاوہ یو اے ای سے، بہت سی، یعنی تقریباً ساری دنیا سے ای میلز آئیں. ان لوگوں نے اجازت لی دعائیں حضرت بحر کے چلے کی، اور کر کے ہمیں بتایا بھی کہ ہمارا چلہ آج مکمل ہو گیا، اپنے اپنے شہر کے، اپنے ملک کے حساب سے. جیسے ہالینڈ والوں کا کل مکمل ہوا، انہوں نے کل فون کر کے ہمیں اطلاع دی، اور آج کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ آج کی دعا میں بھی ہمیں یاد رکھی. اسی طرح مختلف علاقوں میں الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمارے پیر و مرشد اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کا فیضان ہے. مجھے یاد ہے میری عمر بہت کم تھی جب انہوں نے سلسلہ شروع کیا، چند آدمی ہوتے تھے جو یہاں پر بیٹھ کر افطار کرتے تھے اور اس کے بعد چلے جاتے تھے. حضرت محبوب المشائخ سید محبوب اشرف جیلانی دامت برکات منالیہ بھی اس کی گواہی دیں گے, یہ بھی ابتدائی سے بچپن ہی سے دعائے ذوال بحر کا چلا کر رہے ہیں. تو چند آدمی ہوتے تھے, ابتدائی دور تھا, اس کے بعد سلسلہ بڑھتا گیا اور آج یہ رونق آپ کے سامنے. اس زمانے میں نہ انٹرنیٹ تھا, نہ موبائل تھے, نہ کوئی ای میلز کا کوئی ایسا ذریعہ تھا, کوئی ذریعہ نہیں تھا. خط کے ذریعے وہ پوچھتے تھے اور اس کے بعد چند لوگ کرتے تھے. لیکن الحمدللہ جس طرح یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے, یہ سب انہی کا فیض ہے اور انہی کا فیض انشاءاللہ جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پہ استقامت عطا فرمائے اور اس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.